गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहे करके ध्यान से सुनिए। देखो प्रभुपाद जी बड़े महान वैष्णव हैं और उन्होंने सारे संसार में शून्यवाद का नाश किया। रूपा जी की प्रार्थना के रूप में कहा जाता है, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिनी, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी। उन्होंने शून्यवाद का नाश करके पाश्चात्य देशों का उद्धार किया। एक वैष्णव बनना मतलब उसको संपूर्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे 2000 के नोट में सारे नोट आ जाते हैं, एक दृष्टि से कहा जाए तो उसमें बोले तुम्हारे पास कौन सा नोट है, ये कहेगा कि 500 का नोट है क्या तुम्हारे पास, बोलेगा नहीं। 100 का नोट है, बोलेगा नहीं। 200 रुपए है, बोले नहीं। 50 का नोट है, बोले नहीं। कौन सा नोट है तुम्हारे पास, बोले मेरे पास 2000 का नोट है। ये पंखे को भी थोड़ा धीरे कर दो। तो एक दृष्टि से तो ये कहेगा कि मेरे पास ये सब नोट नहीं है, मेरे पास कौन सा नोट है, 2000 का नोट है। और एक दृष्टि से वो ये भी कहेगा कि हाँ मेरे पास 100 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, 1500 रुपए हैं, मेरे पास 2000। तो जो बुद्धिजीवी होते हैं वो सारग्राही होते हैं, वो तथ्यों को समझ जाते हैं कि इसके पास 500 का नोट ना होते हुए भी है, 100 का नोट ना होते हुए भी इसके पास 100 रुपए है। ये सार तत्व का समझने का दृष्टिकोण होता है। अभी जो छोटी बुद्धि के लोग हैं जो केवल शब्द को पकड़ करके बैठने वाले लोग हैं, वो कहेंगे मैंने तो पूछा था उसके पास 500 रुपए है ही नहीं, मैंने पूछा 500 का नोट है, बोले नहीं है मेरे पास। तो शब्द के दृष्टिकोण से तो ठीक कह रहा है, 500 का नोट नहीं है उसके पास, 500 का नोट नहीं है तो वो ऐसा कंक्लूजन निकाल सकता है कि उसके पास 500 रुपए, क्योंकि नोट को ही रुपए कहते हैं। लेकिन तथ्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उसके पास 500 रुपए, इसलिए शब्द पकड़ना आवश्यक नहीं होता, तथ्य को पकड़ना आवश्यक होता है। तो संसार में अन्य जो लोग होते हैं वो पराया थोड़ी सी बातों को ही समझ करके आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर समझदारी नहीं है। 500 का नोट की 500 के नोट बराबर 500 रुपए होते हैं, उसको समझदारी है। लेकिन संपूर्ण समझदारी, इसलिए संसार में कर्मकांडी लोग होते हैं, वो भी शास्त्र के अनुसार पर काम करते हैं। संसार में ज्ञान कांडी लोग होते हैं, वो भी शास्त्र के आधार पर काम करते हैं। लेकिन फिर भी इनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कौन सा श्लोक है वो? सकल रे अशांत, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भक्ति कामी सकल रे अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसको कर्म कांडी ज्ञान कांड का भी एक श्लोक आता है, कौन बताएगा? हाँ, कर्म कांड ज्ञान कांड सकल रे विषय रे भांड। जो कर्म कांड है ज्ञान कांड है, डैश में आता है सकल रे विषय रे भांड। ये सब जहर के घड़े हैं जिनमें जहर भरा पड़ा है। तो जबकि देखा जाए तो कर्म कांड तो शास्त्र के अनुसार किया जाता है, सकामी कहा जाता है इनको। ज्ञान कांड सिद्धि मुक्ति और योगी सब ज्ञान कांड के अंतर्गत आगे आ जाते हैं। ये सब क्या है? सकल रे विषय रे, ये सब जहर के घड़े हैं, इनको पान करने से व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु मतलब कौन सी मृत्यु? आत्मा की मृत्यु। आत्मा का उत्थान नहीं होता, आत्मा का हनन हो जाता, आत्मा अपराधी बन जाती है। अभी शास्त्र ऐसा कहता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते चैतन्य चरितामृत में, कि कोई व्यक्ति भगवान को अगर निराकार कहता है तो बहुत बड़ा कृष्ण का अपराधी है। चैतन्य महाप्रभु उससे बहुत चिढ़ते थे, बोली कितना बड़ा अपराध है कि एक प्रकार से बाप की सत्ता को ही नकार देना। गुरु हत्यारा, पितृ हत्यारा, मातृ हत्यारा, ये भूषण अभी प्राय हम सभी सोचे अपने अंदर तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो हत्यारे हैं ही नहीं। जबकि हम तुलसी आरती करते हैं तो उसमें आता है कि ब्रह्म हत्या छुपाने से, ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति दिलाती है। हम कलयुग के जीव कदम कदम पर ऐसे महापापी हैं। क्षमा करना। बोले कैसे? बोले हम सभी कदम कदम पर इस प्रकार के पाप से पीड़ित हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर जब महाभारत के युद्ध में उनका सामना कर्ण से हुआ तो कर्ण ने उनको बहुत छलनी कर दिया एक प्रकार से। ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि महाराज युधिष्ठिर बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, बचने की संभावना नहीं थी। उनको कैसे भी ले जाकर के शिविर में पहुंचे। तो उनको देखने के लिए अर्जुन भी आए। अर्जुन को पता चला कि बड़े भैया बहुत घायल हो गए हैं और मृत्यु शैया पर पड़े हैं एक प्रकार से। तो आए, औषधियां उनको लगाई गई थी, औषधियों से शीघ्र ही रिकवर भी हो रहे थे। ऐसी ऐसी औषधियां उस समय होती थी कि व्यक्ति तुरंत रिकवर हो सकता था, तुरंत। एक ब्रज में एक ऐसी बूढ़ी औरत थी जिसके पास ऐसे नुस्खे थे। उसने बताया था कि महाभारत की शिक्षाएं उसके पास औषधि की थी, उस समय से परंपरा से किसी से प्राप्त हुई होगी उसको। तो इतनी तीव्र रिकवरी ला सकती थी कि कटा हुआ चीज को तुरंत वो जोड़ करके ठीक करके वापस भेज सकती थी, जबकि कितना टाइम लगता है उसको, टूटी हुई हड्डी, कटा हुआ मांस, चमड़ी, उसको जोड़ना, कई महीने तक प्लास्टर करना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से चीजें जुड़ती हैं। वो कटे हुए हाथ को भी तुरंत सर्जरी करके, ऐसा विद्या था उसके पास। लेकिन उसको कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा योग्य नहीं मिला जिसको वो शेयर कर सके, क्योंकि संसार में प्राय हम सभी लोभ के शिकार हैं। तो उसको लगा कि इस विद्या का लोग दुरुपयोग करेंगे, इसलिए उसने किसी को दिया नहीं और मर गई। महाभारत काल में ऐसी विद्याएं थी, मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता था। तो महाराज युधिष्ठिर जो मृत्यु शैया पर थे, उनको देखने के लिए अर्जुन आए। अर्जुन ने देखा इधर युधिष्ठिर महाराज आश्वस्त थे कि ये अंगराज कर्ण का वध करके आया होगा मेरे पास, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे लिए उन्होंने इतना तो किया ही होगा। तो उन्होंने पूछा, बड़े भैया कैसे हैं? बोले, मैं ठीक हूँ। अब तुमने कर्ण का तो वध कर ही दिया होगा। बोले, नहीं, मुझे तो पता चला कि आपकी स्थिति ठीक नहीं, तो मैं तो देखने चलाया। अरे, तुमने कर्ण का वध नहीं किया, उसने मेरे को मारने में क्या कसर छोड़ी? तो आदमी को मरहम लगाओ वो इतना ज्यादा नहीं लगता, तो जिससे जल रहा है ना उसको अगर जाकर के तुम धुलाई कर दो तो बड़ी शांति मिलती है। तो महाराज युधिष्ठिर को वो देखने के लिए वो इतना अच्छा नहीं लगा, तुमने कर्ण का वध अभी तक नहीं किया, अभी तक कर्ण जीवित घूम रहा है, ये उनको बहुत बुरा लगा। और उन्होंने उनको डांट दिया, बोले, धिक्कार है तुम्हारी गांडी को, फालतू में तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के घूमते रहते। तो ये बात जब अर्जुन ने सुना तो इधर अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं साथ में, युधिष्ठिर जी शैया पर लेटे हुए, और इन्होंने तलवार निकाला धीरे धीरे करके। भगवान कृष्ण देख रहे, बोले, ये तलवार निकाल रहा है। और उस समय के योद्धा साधारण नहीं होते थे, केवल दिखावटी काम काज नहीं होता था। हम लोग तो एयर गन लेके घूमते हैं कि भाई ये असली गन है हमारे पास। तो उस समय तो वो लोग अस्त्र शस्त्र की विद्याओं से, सिद्धांतों से अवगत थे। तो उनके सिद्धांत होते थे कि अगर तलवार म्यान से निकली तो बिना खून पिए वो अंदर नहीं जाएगी, ये नियम था। तो इधर तलवार निकल रही है तो कृष्ण है, युधिष्ठिर महाराज है, अर्जुन है, तो क्लियर है कि बचे दो। कृष्ण और युधिष्ठिर जो तलवार निकालने वाला है किसको मारेगा? तो भगवान कृष्ण को तो मारेंगे नहीं। पूछने लगे, भैया क्या प्रोग्राम है? बोले, प्रोग्राम कुछ नहीं है, इन्होंने गांडीव को लेकर के मेरा अपमान किया है, मैं सहन नहीं कर सकता, मेरी प्रतिज्ञा है, तो गांडीव का अपमान करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। बोले, मेरे गांडीव का अपमान किया है, या तो मर सकता हूँ या मार सकता हूँ। तो इतना उनको क्रोध आ गया उसी समय कि महाराज युधिष्ठिर को मारने ही चले गए। कृष्ण सोच में पड़ गए कि अभी कोई ना कोई एक तो मर ही जाएगा और फिर ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा मत करो, भैया को मारेगा, बड़े भाई को मारेगा, जो पिता तुल्य उनको मारोगे, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तो बहुत बड़ा पाप है। बोले मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, फिर मुझे मरना पड़ेगा। बोले एक उपाय है, तुम इनको तू कह करके बोल दो, आप कहने के बजाय तू कह करके बोल दो, उतने से अपमान से ही क्या हो जाएगी इनकी मृत्यु का पाप तुम्हें मिल जाएगा एक प्रकार से। तो बोले वो हत्या में और तू कहने में अंतर नहीं है। अब हम आज के अगर दृष्टिकोण में देखें तो बाप को तू कहने में कोई देर लगती है आजकल? तू कहना तो दूर की बात है, घर से निकलने में देर नहीं लगती। पितृ हत्यारे नहीं है क्या हम? मातृ हत्यारे नहीं है? गुरु हत्यारे नहीं है? गुरु को ही बदल देते, गुरु का ही त्याग कर देते। ये पाप प्राय कदम कदम पर होते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कितने बड़े हम जघन्य कर्म करने वाले हैं। ये बात मैंने किस उपलक्ष्य में बताया था कोई बता सकता? हाँ, तुलसी महारानी का तो मैंने बताया था। कृष्ण के अपराध तालियां बजाई, सभी जग माफ होती। तो कृष्ण का इसको कहते ब्रह्म हत्यारा, ब्राह्मणों की हत्या करना, पितृ हत्यारे, हम पितृ हत्यारे भी हैं, गुरु हत्यारे, हम गुरु हत्यारे भी हैं। बोले जिस बाप ने हमें पैदा किया हम उसका ही इस प्रकार से हत्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं, ये क्या है? ये क्या है? अपराध है। उनको ही निकाल करके उनकी सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते, धक्के मार के बाहर कर देते। ये क्या, ये पितृ अपराध नहीं है? कई बार तो व्यक्ति सोचता मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी पत्नी को पसंद नहीं है ये, मैं तो चाहता हूं इनकी सेवा करूं, पत्नी के चलते निकाल देते हैं। तो हम अपराधी नहीं है। ठीक वैसे ही जिन कृष्ण ने हमें सत्ता दिया, मूलतः तो हमारे पिता कृष्ण हैं, ये पिता भी हमारे पिता इतने नहीं है, लेकिन फिर भी पिता का अपमान भी अपराध लगा देता है, हत्या का अपराध लगा देता है। बोले उन कृष्ण के हाथ पैरों को ही न मानना तो तुम्हारे हाथ पैर कहां से आ गए भाई? उन कृष्ण के कानों को ही न मानना तो तुम्हारे कान कैसे आ गए? फिर उनकी प्रार्थना क्यों करते हो? जैसे मुस्लिम लोग होते हैं, ये भी भगवान को निराकार स्वरूप में मानते हैं, तो फिर इबादत क्यों करते हो? बोले सुनता है वो, तो सुनता है तो किससे सुनता है? कान होंगे तो ही तो सुनेगा ना। बोले नहीं, कान नहीं होते लेकिन सुनता है, इसका अर्थ क्या निकलता है? बोले हाँ, कान तो होंगे ही लेकिन तुम्हारे जैसे कान नहीं है, जो सुनते हैं तो एकदम से थोड़े समय के पश्चात काम करना बंद कर देते, मशीन आदि लगाने, उनके कान है। तो महाप्रभु कहते हैं कि जो भगवान को निराकार कहता है, भगवान के अंगों को नहीं मानता, बोले वो कौन है? कृष्ण अपराधी है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपराधी है। बोले मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता हूँ, अनंत काल के नरक में। नाश करेगा, ऐसा महाप्रभु बहुत तिरस्कार करते हैं ऐसे व्यक्तियों का। और महाप्रभु ने भी सारे संसार में वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाया। जिन वैष्णवों ने साकार तत्व की स्थापना किया शंकराचार्य के जाने के पश्चात, तो शून्यवाद निराकारवाद इसका नाश तो माधवाचार्य आदि इन सभी वैष्णवों ने किया ही था, लेकिन फिर भी यहाँ से भारत से भाग गया था ये शून्यवाद आदि निराकारवाद आदि, और पाश्चात्य जगत में जाकर के शरण ले ली थी इसने, ये फैल गया था वहां। प्रभुपाद जी ने क्या किया, पाश्चात्य जगत में भी इसका नाश कर दिया। तो प्रभुपाद जी कैसे वैष्णव हैं, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। देखो प्रभुपाद जी क्या बोले, श्री भगवान निराकार। श्री भगवान क्या है, निराकार है। वो ये नहीं कह रहे हैं तो क्या अब उन्होंने कृष्ण के प्रति अपराध कर दिया। शास्त्र समझा रहा है इस बात को कि तुम्हें इस सिद्धांत को किस तरह से समझना चाहिए। वो समझने का दृष्टिकोण, अभी हम छोटे बच्चे हैं तो हमारे को हजम ही नहीं होता है। भक्ति मार्ग में चीजों को हम जानते नहीं, हम तथात्मक रूप से विषय वस्तु को नहीं जानते, शाब्दिक वस्तु रूप में हम प्रयास करते चीजों को समझ। तो महाप्रभु ने कहा कोई निराकार कहता है तो वो तो कृष्ण अपराधी। और प्रभुपाद जी यहाँ शुरुआत में तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि श्री भगवान निराकार, श्री भगवान साकार, श्री भगवान अंतर्यामी। तीन तथ्यों को प्रभुपाद जी ने प्रकाशित किया, इसे वैष्णव सार ग्रह प्राय संसार में इस बात का झगड़ा अनादि काल से चला आ रहा है कि भगवान निराकार है या साकार है। इसी को ये बात समझ ही नहीं आती। संसारी दृष्टि से हम इतने आसक्त हैं कि वो आसक्ति का नाश नहीं होने के कारण परम पवित्र भगवान हमें समझ में नहीं आते। संसार क्या है, बोले संसार भगवान की बिना प्रकृति है। संसार क्या है, भगवान की बिना प्रकृति है। जब बिना प्रकृति है तो बिना प्रकृति कैसी है, बोले ये भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि एवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान की ही प्रकृति होते हुए भगवान से भिन्न है। भगवान से कैसी है, भिन्न है, अलग है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो भगवान कैसे हैं, बोले परम पवित्र। भगवान कैसे हैं, परम पवित्र। तो भगवान से जो भिन्न है वो कैसा होगा, पवित्र होगा। जब यही चीजें भगवान से यदि जुड़ जाएंगी तो पवित्रता का दर्शन दे सकती हैं, और अगर इन्हें भिन्नता के साथ देखा जाएगा तो यही चीजें कैसा दर्शाएंगी, अपवित्रता के रूप में प्रदर्शित करेंगी अपने आप को। संसार का कोई भी मिथ्या अहंकार अगर कृष्ण से भिन्न होगा तो ये अहंकार सबसे बड़ी अपवित्रता का सूचक होगा। ये सब अहंकार सबसे बड़ा तत्व है भिन्ना प्रकृति। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उससे ऊपर मन, उससे ऊपर बुद्धि, उससे ऊपर अहंकार। ये अहंकार का जो तत्व है ये सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व पाया जाता है, और ये अपवित्र तत्व है यदि कृष्ण से अलग है। कृष्ण से जब जुड़ जाएगी कोई भी चीज तो वही क्या हो जाएगी, परम पवित्र हो जाएगी। अब हम इन्हीं तत्वों से तो बने हैं, अब इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर अगर बना है तो हमारे शरीर में क्या चीज भरी पड़ी है, हमारा शरीर मल मूत्र खून मांस मज्जा हड्डी ये सब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही तो समावेश है, ये मन बुद्धि अहंकार का ही तो समावेश है, ये सब चीजें हमारी कैसी हैं, पवित्र हैं या अपवित्र हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छूने योग्य हो। और अगर हम इन सब चीजों से क्या हैं, आसक्त हैं, तो आसक्त हैं तो आसक्ति के कारण हम कैसे हो जाएंगे, पवित्र होंगे या अपवित्र होंगे, अपवित्र बन जाएंगे। और जब हम अपवित्र हैं तो पवित्र वस्तु हमें समझ में आएगी क्या, जब तक हम अपवित्र बने हुए हैं तब तक हमें पवित्र भगवान समझ में नहीं आ सकता। तो भागवत क्या सिखा रहा है, बोले धर्म के चार चरण होते हैं, उसमें से शौचम, शौच माने पवित्रता। पवित्रता का नाश कैसे होता है, पवित्रता का उल्टा क्या है, पवित्रता का उल्टा क्या है, अपवित्रता। अपवित्रता कैसे आती है जीवन में सबसे ज्यादा मात्रा में, चार नियम अपवित्रता का, एक नियम उसमें भी सूचक है ना, कैसे आती है, हाँ, व्यभिचार के द्वारा, अवैध संबंध के द्वारा। ये व्यभिचार का दूसरा नाम क्या है, बोले संग, अवैध स्त्री संग करना। संग का अर्थ क्या होता है, आसक्ति। संग का अर्थ क्या है, आसक्ति। अब कोई व्यक्ति अगर स्त्री संग नहीं करता, अवैध संग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या वो पवित्र हो गया, वो अपवित्रता की पराकाष्ठा है, लेकिन उस अपवित्रता के मार्ग में इसको आंखें खोल के सुना करे, न तुम आंखें खोल के सुनता है, नहीं आंखें खोल के सुनता है। तुम दोनों भाई पता नहीं क्या सोच करके क्लास में बैठते हो। बोले अपवित्रता का अर्थ क्या निकलेगा, बोले संग। संग माने आसक्ति। अगर हमारी कहीं भी आसक्ति है इसका मतलब हम कैसे हैं, अपवित्र। खुद के देह से भी अगर आ सकती है तो इसका मतलब हम अपवित्र हैं। संसार में कहीं भी आ सकती है बाय डिफॉल्ट अपवित्र हैं। देह आ सकती भी है वो भी क्या सूचक है, अपवित्रता का ही सूचक है। उस अपवित्र बुद्धि से क्या हम परम पवित्र भगवान को समझ पाएंगे, हम भिन्नता की दृष्टि से देखेंगे। फिर अब प्रभुपाद जी जैसे संत कैसे होते हैं, कल ही परसों का प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया था। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं। अपनी ओर से मैं आश्चर्य कर रहा था कि जैसे प्रहलाद महाराज का हम वर्णन कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज को मरने की चिंता नहीं थी, उनको अभिनिवेश अंध तामेश्वर की अवस्था में नहीं थी। यहां तक कि वृत्तासुर जिन्होंने राक्षसी शरीर प्राप्त किया था उनको भी मरने का भय नहीं था। और हम सब तो प्रभुपाद जी का स्तर कैसा है, बोले मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं। ऐसे मरने का डर नहीं तो उनको देह आ सकती है। जब देह आ सकती है नहीं तो उनको तो कहीं भी आ सकती नहीं है, जब कहीं भी आ सकती नहीं तो उनकी चेतना कितनी पवित्र होगी। और जब इतनी चेतना पवित्र है तो कृष्ण को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? अवश्य समझ सकते हैं। हम सभी लोगों को कृष्ण उतनी मात्रा में समझ में नहीं आ सकते, इसलिए प्रभुपाद जी संपूर्ण रूप से कृष्ण तत्व को समझ करके चल रहे हैं, सार तत्व के रूप में कृष्ण को समझ करके चल रहे हैं। हम लोग तो केवल कलह को स्वीकार करते हैं, शास्त्रों को पढ़ करके भी और उसमें से कुछ निकाल नहीं पाते। हम वैदिक स्तोत्रों को लेकर के आगे बैठेंगे, शास्त्रों को लेकर के झगड़े करते हैं। कैन यू इमेजिन, शास्त्र जो भगवान का अपौरुषेय है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसको जब हम पढ़ते हैं हम सीखते हैं तो उसको लेकर के हमारे अंदर झगड़े चालू हो जाते हैं, हमारी चेतना स्वीकार ही नहीं करती। कोई कहेगा नहीं नहीं भगवान साकारी है, कोई कहेगा नहीं नहीं भगवान निराकार है, कोई कहेगा नहीं नहीं भगवान परमात्मा के रूप में है। एक ही व्यक्तित्व ने शास्त्र दिया, कॉमन सेंस है, और वो व्यक्तित्व भी साधारण नहीं, वो भी असाधारण व्यक्तित्व। गीता भी रखा करो साथ में। जो दो बातें नहीं करते, हम तो कदम कदम पर बदल जाते हैं, अभी कुछ बोलेंगे थोड़ी देर बाद कुछ और बोलेंगे, लेकिन सारे शास्त्रों को वेद व्यास जी ने लिखा है तो दो बातें क्यों बोलेंगे? वेद व्यास जी ऐसे तो है नहीं कि जो दो बातें बोले, लेकिन उन तारतम्य को हम नहीं समझ पाते, या हमारी वेदी हमारी बुद्धि ये नहीं समझ पाती। गीता में भगवान बता रहे हैं 11वें अध्याय का 48वां श्लोक है, क्या कह रहे हैं? बोले न वेद यज्ञ अध्ययनैर न दानैः, क्या कह रहे हैं? बोले हे कुरुश्रेष्ठ, तुम वेद अध्ययन के द्वारा न वेद अध्ययनैः न दानैः न च क्रिया भीर न तपो भीर उग्रई, न आप तपस्या से समझ सकते हो मुझे, कौन सी तपस्या से? उग्र तपस्या से भी नहीं समझ सकते। जो उग्र आराधना शुक्राचार्य आदि ने धूम्र ऊर्ध धूम्र तप किया, बोले वो भी नहीं समझ पाए। अब हम वेदों को लेकर के देखो, देखो वेद में ऐसा लिखा, वेद शास्त्र से तुम नहीं समझ सकते। एवं रूप शक्यम अहम नरलोके दृष्ट तो अनन्ये न कुरु परवीरा, हे कुरुश्रेष्ठ तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने न देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में या संसार में देखा जा सकता हूँ, कोई मुझे इन बातों से नहीं समझ सकता। भगवान आगे बहुत सारी बातों को समझाते हैं। वैदिक शब्दों को, उपनिषदों को, अन्य ग्रंथों को लेकर के अगर बैठ जाएं और सोचें कि हम समझ लेंगे भगवान को, नहीं समझ सकते। दूसरी ओर कृष्ण क्या करें, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। अब ये कैसे विपरीत आर्थिक श्लोक है, एक ओर तो करें मैं वेदों से नहीं प्राप्त हो सकता, दूसरी ओर करें वेदों का प्राप्य वस्तु मैं ही हूं, वेदों के द्वारा बताया जाने वाला जनाया जाने वाला वो तथ्य कौन है? बोले वो मैं ही हूं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। कैसे समझेंगे हम? इसका एक ही उपाय है कि हम भक्ति के द्वारा क्या करें, भक्ति के द्वारा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्त्वतः, बोले भक्ति ऐसा परम पवित्र वस्तु है जो निर्गुणा भक्ति है, जो संसार के किसी गुण से युक्त नहीं है, गुण से चिपटी नहीं है, संसार से आसक्ति का कोई इसमें लेश मात्र भी तत्व नहीं पाया जाता, अकिंचना भक्ति, वो शुद्ध भक्ति, इसलिए उसको विशुद्ध भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति कहते हैं। अगर उसका आश्रय लिया जाए तो उसका आश्रय कैसे ले सकता कोई व्यक्ति? बोले दीनता के साथ। कैसे ले सकता है? जब अहंकार के साथ अगर कोई आश्रय लेता है तो बोले तत्विधि प्रणिपाति परिप्रश्न सेवया, जब तक तुम्हारे अंदर जरा सा भी अहंकार है, जब तक तुम्हारे अंदर अकिंचन वृत्ति नहीं है, तो अकिंचना भक्ति भी हृदय में नहीं आएगी। अकिंचन वृत्ति जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई अहंकार हो ही नहीं। अब अहंकार कैसे होता है? संसार की विषय वस्तुओं का भगवान से भिन्न सत्ता मान करके चलने की वृत्ति। अब भिन्न में हम संसार में कितने आसक्त हैं, आसक्त हैं तो अहंकार नहीं होगा। जिस चीज से भी आसक्त हैं वो आसक्ति ही एक नया मिथ्या अहंकार का उदय अवश्य करेगी। तो फिर हमारी खोपड़ी में ये बातें आएंगी? ऐसे अकिंचन वैष्णवों का जब आश्रय लेते हैं, छोटी मोटी येन किन प्रकार सेवा करती हूँ जब आगे बढ़ते हैं, तो उस सेवा के प्रताप से धीरे धीरे हमारा पवित्रीकरण होने लगता है और धीरे धीरे हम परम पवित्र भगवान को पाने के लिए एक समय साथ है, हम भी उनकी संगति से अकिंचन बन जाते हैं। एकमात्र इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, ऐसा प्रहलाद महाराज ने वर्णन किया। सातवें स्कंद में बड़े विस्तार से वर्णन इस बात का वो करते हैं। इसलिए यहां जो प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि भाई श्री भगवान, प्रभुपाद जी कहते निराकार है, श्री भगवान अंतर्यामी, तो किस रूप में ये प्रकाशित कर रहे हैं? बोले श्री भगवान ये सारग्राही वैष्णव है, तथ्यों के आधार पर प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपने निराकार पक्ष से सर्वव्यापी ब्रह्म है। भगवान तो पूर्ण है, तो पूर्ण की परिभाषा हर क्षेत्र में पूर्ण होंगे। बोले जैसे सूर्य के प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होता है, तो ये क्या है? बोले ये भी सूर्य ही है। अब जिसकी जैसी बुद्धि है उस बुद्धि के स्तर पे तो समझेगा। तो आचार्य बनकर बोले आत्मा क्या है? बोले जो चेतना है शरीर में ये क्या है? आत्मा है। तो आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है, सर्वव्यापी है। कैसे सर्वव्यापी है? बोले चेतना के आधार पर। कैसे? चेतना के आधार। बोले अब शरीर काम नहीं कर रहा है तो वही दूसरी अवस्था है उस चेतना की, कौन सी? इस शरीर को छोड़ के चली गई। कहां निवास करती है? बोले हृदय में निवास करती है। कहां से निकली? हृदय से। सारे शरीर में चेतना खून के माध्यम से फैल रही थी और खून का शोर सारे संसार सारे शरीर में पहुंचाने का क्या था? हृदय। तो वो आत्मा कहां रहती है? बोले हृदय में वास करती है। एक प्रकार से ये परमात्मा की तरह माना गया। निराकार कैसे? आत्मा का कोई ऐसा विशेष आकार नहीं, चेतना के आधार पर बोले सारे शरीर में व्याप्त है, सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी के आधार पर ऐसे ही भगवान भी कैसे हो गए सर्वव्यापता के आधार पर? निराकार। जैसे आत्मा हृदय देश में रहती है, ऐसे ही बोले भगवान परमात्मा रूप में भी हृदय देश में ही रहते हैं, क्योंकि आत्मा कहां से शक्ति पाती है? बोले भगवान से शक्ति पाती है। इसलिए ये कैसे इसका रूप और क्या है, बोले इसका रूप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा स्वरूप भी है, ऐसे ही इसका हृदय देश में एक आत्म स्वरूप, इसका अपना स्वरूप है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बोले ये आत्मा क्या है, बोले आत्मा भगवान के धाम में दिव्य सेवा का आनंद लेती है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करके आदान प्रदान होता है, मधुर आनंद, मधुर आदान प्रदान होता है, वो धाम का स्वरूप है इस आत्मा का। ऐसे ही भगवान का अपने भक्तों के साथ, जैसा भगवान के भक्त लोग जिस वृत्ति के साथ भगवान की आराधना करते हैं, जिस रस का आस्वादन करने की इच्छा से आराधना करते हैं, भगवान उसी रस में भगवान उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो भगवान का कैसा स्वरूप है, साकार स्वरूप है। लेकिन अब जिसकी बुद्धि का इतना स्तर है ही नहीं तो उसको कैसे समझाया जा सकता है, उसको इंतजार करना पड़ेगा, जब उसमें सामर्थ्य आएगी धीरे 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 पोषित होगा तब वो एकदम बालक बिना गिरे चल पड़ता है, पहले चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, ऐसी हालत उसकी बनी रहती है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, श्री भगवान निराकार साकार तथा अंतर्यामी है, वे अपने निराकार पक्ष से वे सर्वव्यापी ब्रह्म है, तो अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा रूप है, सभी जीवों के हृदय में विराजमान, और अपने परम साकार रूप से भी अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनकी दिव्य प्रेममय सेवा के विसर्जन। तो ये प्रभुपाद जी की विशेषता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इन विभिन्न स्वरूपों में श्री भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा। अब जो भगवान की जो भगवत स्वरूप की जो लीलाएं हैं, जिसमें भक्तों के साथ जो आदान प्रदान होता है, बोले उन भगवान की लीलाओं का अनुमान आंशिक मात्रा में ही भक्त लोग लगा पाते। बोले आंशिक मात्रा में भक्त लोगों को कैसे पता चलता है, बोले वो भी भगवान की ही शक्ति से, जब वो भक्ति करते हैं जिस प्रकार की उनकी स्तर की भक्ति होती है, वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं, अनंत शेष रूप में भगवान ने वर्णन किया, गीता को भगवान ने वर्णन किया, ऐसे ही भागवतम आदि को सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से भगवान ने वर्णन किया है, कौन वर्णन कर सकता है, भगवान ने ही ब्रह्मा जी के हृदय में इस चीज को वर्णित किया। तो जब भगवान वर्णन करने उसी भक्ति को कौन कितना अंगीकार कर पाता है, सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी विशेष रूप से ऋषियों को यहाँ संबोधित कर रहे हैं कि मैं अपनी उड़ने की जो क्षमता मेरे को भगवान ने प्रदान की है, मेरे जैसे पक्षियों को प्रदान की जाती है, उतनी ही मात्रा में मैं उड़ करके आपको इन कथाओं का श्रवण कराऊंगा। ऐसे सूत गोस्वामी जिन्होंने 1000 वर्ष का सत्र संबोधन किया, ऐसे सूत गोस्वामी जिन्होंने भगवान की लीलाओं के लिए 1000 वर्ष का सत्र संबोधित किया, वो भी निरंतर के, ऐसा नहीं कि 1 घंटा सुने 1 घंटा निरंतर के साथ, विचार करो भगवान की कितनी अनंत लीलाएं, भगवान के भक्तों की कितनी अनंत लीलाएं, और हम वो अपने आप को साधारण पक्षी घोषित कर रहे हैं और हम अपने आप को परमहंस से नीचे नहीं समझते, दूसरा भक्त है ही नहीं, सिवाय संदेह, सिवाय किसके, संदेह। हम भगवान को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, भगवान के भक्तों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, निरंतर प्रश्न हमारे हृदय में भरे पड़े हैं, उस प्रकार का हमारा विश्वास है ही नहीं कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा रूपी रत्न को कहीं भगवान के या भगवान के भक्तों के चरणों में समर्पित कर सके, और हम विचार करें कि हमें भगवान मिलने वाले हैं तो भाई कैसे मिलेंगे भगवान। जब तक हम अपना स्वतंत्र इच्छा रूपी रत्न को अगर समर्पित नहीं करते, तब तक हमें संसार में आसक्ति ही घेर के बैठी रहेगी, और आसक्ति के परिणाम स्वरूप इस अपवित्र संसार में ही हमें आवागमन का शिकार होना पड़ेगा। जब हम गुरु वैष्णव भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं और ये आसक्ति का ही निरूपण है कि हमने माया को जीत लिया। ये भगवान की कौन सी माया है? माया शक्ति क्या है? बोले जो भिन्ना प्रकृति है यही क्या है? मेरी माया है। आजकल हम बचपने में कई बार मैं शादी तो नहीं करूंगा, मतलब जैसे उसने माया को जीत लिया है। विशेष रूप से स्त्री माया का ही स्वरूप होती है। भागवतम में तीसरे स्कंद में ऐसा कपिल भगवान वर्णन करते हैं, तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या तुमने माया विजयी हो गए? तो माया को जीत लिया तुमने। दूसरी जब माया को जीत लिया तो भाई तुम्हारी आसक्ति फिर कहीं होनी नहीं चाहिए। माया विजयी तो उसको कहते हैं। जब आसक्ति कहीं नहीं है तो फिर इधर उधर नोट कमाने के लिए क्यों भाग रहे हो? किसके लिए संसार में इधर उधर भटक रहे हो? किस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के स्वतंत्र रत्न को, इच्छा रूपी स्वतंत्र रत्न को क्यों नहीं समर्पित कर रहे हो? क्यों इसका दुरुपयोग करने पर तुले हुए हो? कई बार प्रश्न करते भक्त लोग, भाई कोई कोई भक्त लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ये मेरे को ही समर्पित करे, मेरे ही अनुयायी बन करके रहे, मेरी आज्ञा के अनुसार ही जीवन जिए। बोले दीक्षा आसानी से बोले दिलाते नहीं है। अरे वो तो बेवकूफ होगा अगर कोई ऐसा कहता है कि तुम मेरा ही अनुयायी बनो। वो खुद आ सकते हैं किसी दूसरे को कैसे कल्याण कर सकते। लेकिन जो तुम्हें ऐसा लगता हो कि हाँ भाई ये परम वैष्णव है, तो तुम उसको क्यों नहीं अपने जीवन को समर्पित कर देते? कि क्या तुमको संसार में वैष्णवी नजर नहीं आते? पूरी तरह से न वैष्णव नजर आते न तुमको भगवान नजर आते। चलो वैष्णव नहीं नजर आते, भगवान को समर्पित कर दो। ये सब बहुत बड़ा बालकपन है, बहुत बड़ा बचपना है। इसी कारण से हमारे अंदर दीनता नहीं आ पाती। भाषण तो दे देते हैं, मैं भाषण दे रहा हूं इतनी देर से दीनता के ऊपर, लेकिन मैं खुद आ सकता हूँ? आ सकता हूँ तो इतना समर्पण नहीं, लेकिन इच्छा जरूर है। कभी ऐसे वैष्णव कृपा हो जिसके माध्यम से कभी हम अपनी आसक्ति का त्याग करके ऐसा समझ पाए कि इस स्वतंत्र रत्न को जो भगवान ने हमें आत्मा बना करके दिया है, इसको हम प्रेम में ही सेवा को पाने के लिए प्रेम से समर्पित कर पाए और सार्थत्व में इस वैष्णवता को कभी जीवन में समझ पाए। ये मनुष्य शरीर में एक बहुत बढ़िया मौका है मेरे लिए, लेकिन मैं ऐसे पक्षियों की कैटेगरी में नहीं आता जिस पक्षियों की कैटेगरी में यहाँ हंस लोग होते हैं। हम तो कौए की तरह हैं भाई। कौआ भी उड़ता है लेकिन वो काक तीर्थ के लिए उड़ता है। अपनी दशा तो मेरी दशा तो ऐसी ही है, जिसकी दया से हम भगवान की लीलाओं का थोड़ा बहुत भगवान कृपा करके हमें भी आस्वादन दें और हमारा ये जीवन सफल हो। धन्यवाद आप सभी भक्तों का भागवत कथा का श्रवण करने के लिए।